ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
अमृत कार्यक्रम में चौथा अध्याय और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जो घनिष्ठ मित्रता है उसकी व्याख्या हम पिछले कुछ सिटिंग से कर रहे हैं। हमारे पिछले बुधवार को हमने दो श्लोकों को एक साथ समझने की कोशिश की, जहां भगवान अपने अनेक जन्मों के विषय में बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तो पांचवें श्लोक में भगवान ने अपने अनेक असंख्य जन्मों के विषय में कहा, और छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मैं जन्म लेता हूं परंतु फिर भी मैं अजन्मा हूं, और अर्जुन तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं असंख्य, उन सब का ज्ञान मुझे है, न केवल मेरे स्वयं के जन्म बल्कि अर्जुन तुम्हारे सारे जन्म, और न केवल अर्जुन तुम्हारे सारे जन्म बल्कि जितने जीव हैं जितने जन्म उनके आज तक हो चुके हैं और होने वाले हैं उन सब का विस्तार से मुझे सब ज्ञान है, स्मृति है। तो भगवान श्री कृष्ण में हमने ये समझने की कोशिश की कि जन्म के साथ पूर्ण स्मरण ये कैसे संभव है, क्योंकि इस भौतिक संसार में जन्म की जो पीड़ा है वो हमारी स्मृति को हर लेती है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि भगवान का जो जन्म है वो हमारे जन्म के समान नहीं होना चाहिए। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो भगवान आत्ममायया, भगवान श्री कृष्ण जो कि अपने स्वयं की अंतरंगा शक्ति के द्वारा जब प्रकट होते हैं तो जितने विरोधाभास इस भौतिक संसार में हमें दिखते हैं उन सब का समन्वय भगवान श्री कृष्ण ही केवल कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये दो सर्कल्स लिए थे, सर्कल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, सर्कल ऑफ सब्जेक्टिविटी। भगवान श्री कृष्ण ऑब्जेक्टिवली सब जीवों के लिए एक समान अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनमें से कुछ जीव जब भगवान की ओर उन्मुख होते हैं तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो वो है सर्कल ऑफ सब्जेक्टिविटी, और इसमें विरोधाभास नहीं है। इस संसार में हम यदि करने जाएं तो हमारे अंदर विरोधाभास आ जाएगा। We can't be simultaneously objective and subjective. But Krishna, who is Ajopisan Navyayatma, he can be simultaneously the opposites. और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। तो तीन भगवान की शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो अंतरंगा शक्ति है भगवान की पर्सनल आध्यात्मिक संसार की शक्ति, जिसका इस्तेमाल कर भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। तो आत्म माया, हमने ये लास्ट स्लाइड ली थी पिछले हफ्ते, जहां हमारे आचार्य आत्म माया के दो अर्थ बता रहे हैं, अहितु की कृपा और स्वतंत्र इच्छा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि भगवान का अवतरण और सही समय पर ये श्लोक आ रहे हैं। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हम मनाने वाले हैं इस आने वाले रविवार को, तो सही समय पर जो इस चौथे अध्याय का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, एक दृष्टिकोण से पूरे गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और वो कौन सा है? गाएंगे गाएंगे आराम से। तो ये श्लोक क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है इसलिए हम भागों में इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। आज केवल भाग एक होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, माता जी आप थोड़ा सा आपका सर आ रहा है, जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो ये जो कि भगवद गीता का क्लासिक वर्स जिसको कहते हैं, इसके पश्चात भी और उसके पश्चात भी, परित्राणाय साधु नाम, उसके पश्चात जन्म कर्म चमे दिव्यम्। तो ये जो कुछ श्लोक हैं इस चौथे अध्याय के, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, तो यहां जो भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, उसका मर्म, उसका सार समझ लो इन श्लोकों में भगवान दे रहे हैं, आज के श्लोक से जिसकी शुरुआत हुई है। तो भगवान इन श्लोकों के द्वारा न केवल एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, बल्कि इन श्लोकों के द्वारा भगवान अपना स्वयं का मनोभाव अर्जुन के सामने और अर्जुन के द्वारा हम सब के सामने प्रकट कर रहे हैं। कृष्णा इज रिवीलिंग हिज हार्ट फॉर कंडीशन लिविंग एंटिटीज। तो इसके अंदर हमें केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं समझना है, वो तो हम समझेंगे, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, परंतु भक्ति, भक्ति और भावना, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का अर्थ क्या बताया है, कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमें भावना के द्वारा, क्योंकि भगवान इन श्लोकों में अपनी भावना डाल रहे हैं, तो भावना के द्वारा हमें समझना है कि क्या भगवान का उद्गार है इन श्लोकों में। तो आज के हमारे चर्चा के विषय पिछले श्लोक से संबंध, यदा यदा शब्दों की व्याख्या, भगवान के द्वारा ही शब्द का प्रयोग, धर्म शब्द की व्याख्या। अच्छा, ये सब हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं, आज तो इतना सब नहीं हो पाएगा। धर्म की ग्लानि की व्याख्या, भगवान ने अर्जुन को भारत नाम से पुकारा है। अधर्म की परिभाषा, आत्मानं सृजामि शब्दों की व्याख्या। तो एक एक शब्द और उन शब्दों से बने हुए एक एक वाक्य, उनके अंदर इतना गुह्य ज्ञान है। और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यगण इतनी गहराई से इस रहस्य को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं कि यदि हम अपने आप को अचरज में डालना चाहें तो भी वो शब्द कम रहेगा कि क्या इन शब्दों के अंदर, इन श्लोकों के अंदर गुह्य ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, पिछले श्लोक में भगवान अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हैं, इनकी व्याख्या कर रहे थे। बहुनी में जन्मानी और अजह भगवान ने अपने आप को कहा। तो अब यह प्रश्न उठता है कि भगवान यदि अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, यह भी समझ लिया हमने कि भगवान का जन्म हमारे जन्म के समान नहीं है, कारण क्या है? प्रश्न अब ये कि कारण क्या है, क्यों इतना प्रयोजन करना कि इतना कई बार कंफ्यूजिंग लगता है कि जो अजन्मा है वो जन्म लेते हैं, एक जन्म नहीं असंख्य जन्म लेते हैं और अपने विभिन्न अलग अलग प्रकार के रूपों में अवतारों में जन्म लेते हैं, समय पर जन्म लेते हैं, क्यों, क्या कारण क्या है? तो भगवान के ऐसे विलक्षण अवतरण का कारण आज के श्लोक में भगवान बताना प्रारंभ किए हैं। और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, इससे ज्यादा क्या जानना महत्वपूर्ण है, क्यों जन्म लेते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम केवल यदा यदा ही, बस आज की चर्चा हमारी केवल ये तीन शब्दों के ऊपर होगी इस श्लोक के, यदा यदा ही। आपको लग रहा होगा कि ये तीन शब्दों के अंदर इतना क्या कि पूरा एक घंटा डिस्कशन चाहिए, एक घंटा भी कम पड़ेगा। भगवान ने, क्योंकि भगवान के श्री मुख से जो भी कुछ निकलता है वो साधारण शब्द नहीं होते, इसलिए संस्कृत भाषा में इनको कहते हैं अक्षर। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षय नहीं होता कभी, उसे कहते हैं अक्षर। बाकी भाषाओं में शब्द बोल सकते हैं उनको, परंतु संस्कृत इस भाषा में जो भी कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं, अक्षर, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो यदा यदा आज के श्लोक की शुरुआत भगवान ने इन दो शब्दों से की है। तो बहुत सरल है इसका अर्थ हमारी भाषा में समझने, परंतु जब विस्तार कर गहराई में कूदेंगे तब समझ में आएगा कि कितना गहरा है। केवल भगवान ने जो दो शब्द से श्लोक की शुरुआत की है, यदा यदा अर्थात जब जब। तो हम तीनों शब्द को एक साथ लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि यदा यदा और ही का अर्थ है निश्चित रूप से, यदा यदा का अर्थ हमने समझ लिया जब जब। तो अब यदा यदा ही ये जो वाक्य है इसका पूरा अर्थ इस प्रकार से हुआ, पहले ये समझ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। तो गौर किस पर करना है हमको, कौन से शब्दों पर गौर करना है, जब जब, और जब जब के साथ कनेक्टेड कौन सा है, तब तब। बोलते हैं ना जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होएगा। तो जब जब के साथ है तब तब, और इसके साथ है ही निश्चित रूप से। तो आवश्यकता पड़ने पर भगवान कह रहे हैं, कब आवश्यकता पड़ने पर, कब आवश्यकता पड़ने पर, जब जब। आगे मत जाइए आज श्लोक के, आज हम केवल यदा यदा ही बस उसी पर है। तो आवश्यकता जब जब पड़ती है भगवान कह रहे हैं, निश्चित रूप से मैं प्रकट होता हूं। तो अब हम, भगवान ने दो बार क्यों यदा यदा, एक बार कह सकते यदा ही धर्मस्य, ये दो दो बार कहने की क्या जरूरत है। देखो कई बार व्याकरण के दृष्टिकोण से जब किसी एक शब्द को दोहराया जाता है और तुरंत दोहराया जाता है तो उसके अंदर व्याकरण के दृष्टिकोण से लगता है कि जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। जैसे यदि कहा जाए वो गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी, दो बार कहा गया ना, तो व्याकरण के दृष्टिकोण से भाई अगर कोई अगला व्यक्ति बुद्धिमान है तो एक बार धीरे बोलने से समझ जाएगा कि धीरे आ रही थी, ये दो बार धीरे धीरे क्यों। तो यहां पर दो बार धीरे धीरे ये शब्दों का इस्तेमाल जब होता है तो उसमें व्याकरण जो है, किसी भी भाषा का जो व्याकरण है वो बुद्धि, वो बुद्धि से कार्य उसका होता है। परंतु उन वाक्यों के अंदर भावनाएं भी होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि गाड़ी धीरे आ रही थी, केवल इतना ही बोल दे तो वो बुद्धि से बोल रहा है, तो तुम बुद्धि से समझ लो। परंतु जब वो दो बार कहता है धीरे धीरे आ रही थी गाड़ी, तो उसके अंदर वो अपनी फीलिंग्स डाल के बोल रहा है कि सचमुच बहुत धीरे आ रही थी। तो एक है किसी भी भाषा में भाषा का व्याकरण जो कि बुद्धि के स्तर पर होता है, और दूसरा है उसके पीछे भावना जो कि हृदय और मन के स्तर पर उसकी चर्चा होती है। तो इसलिए हम भी जब किसी पॉइंट को बहुत एम्फैटिकली बोलना चाहते हैं तो उसको एम्फैटिकली बोलने के लिए कई बार रिपीटिशन करना जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, और कलयुग में तो जरूरी है रिपीटिशन करना, क्योंकि एक बार बोलने से, क्योंकि पहली बार जब बोलो तो मन पता नहीं वो कौन से लोकेशन पर है, तो जब दूसरी बार बोलते हैं तब फिर मन को सुनाई देता है दूसरी बार दोहराया गया है तो शायद इंपॉर्टेंट होगा, तो जहां कहीं पर भी वो होता है वो आने की कोशिश करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, फिर तीसरी बार भी बोलो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, आगे केवलम भी लगा दिया, उसके अलावा और कुछ मत सुनना, क्या हरिनाम हरिनाम हरि, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नो अदर वे नो अदर वे नो अदर, तीन तीन बार। तो इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु अपनी भावना डाल रहे हैं। तो भगवान भी यहां पर जब जब, तो उसके अंदर भगवान संस्कृत का जो व्याकरण है उसके साथ साथ भगवान हमारे सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमें भगवद गीता को केवल व्याकरण की दृष्टिकोण से नहीं समझना है, हमें भगवद गीता को भक्ति भावना के दृष्टिकोण से समझना है। तो केवल दो बार यदा कहने से भगवान भक्ति योग को ज्ञान योग के ऊपर ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भक्ति योग को ज्ञान योग से ज्यादा प्रधानता दे रहे हैं। तो ये एक कारण हो गया दो बार यदा यदा कहने का। अब हमारे आचार्य बहुत सुंदर तरीके से दो बार जो यदा यदा है उनके अलग अलग अर्थ हैं। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ बदलते हैं। जैसे कि संदर्भ, संदर्भ के दृष्टिकोण से आप देखो तो किसी भी भाषा में कभी कोई एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सोना। सोना ये हिंदी का शब्द है। अब मैं आपको केवल पूछूं, बताओ सोना का मतलब क्या है? तो आप पूछोगे आप किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में? या शादी के कॉन्टेक्स्ट में? सोना खरीदा जाता है उसमें। तो इसलिए यहां पर भगवान ने एक साथ, अभी कोई कहेगा कि भाई भगवान की एक्सपर्टीज देखिए इस भाषा को इस्तेमाल करते हुए, कि एक साथ यदा यदा बोल रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट तो एक ही होना चाहिए ना। एक ही श्लोक में एक के बाद एक यदा यदा बोल दिया तो कॉन्टेक्स्ट तो एक ही होना चाहिए। परंतु भगवान दोनों जो यदा यदा, ये दोनों शब्दों का यदि अनुवाद आप करोगे तो हां जब जब आ गया उसका अनुवाद, परंतु भगवान के मनोभाव को जानते हुए हमारे टीकाकार जैसे बलदेव विद्याभूषण वो अंदर जाकर कहते हैं कि एक जब जो है, एक यदा जो है उसका अर्थ अलग है, दूसरा जो यदा है, दूसरा जो जब है उसका अर्थ अलग। तैयार हैं आप? तो जब पहली दफा भगवान ने इस श्लोक में यदा शब्द कहा तो हमारे आचार्य कहते हैं इसका अर्थ क्या है, जिस समय। तो पहला जो यदा है उसका कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग, एक है टेक्स्चुअल मीनिंग और एक होता है कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग। तो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग पहले यदा का हुआ जिस समय। तो जिस समय से, अब आप पूरा श्लोक का अनुवाद कैसे करोगे? भगवान यदि केवल हम पहले यदा पर फोकस करें तो पहले यदा पर फोकस करते हुए पूरे श्लोक का अर्थ क्या होगा? जिस समय धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, मैं अवतरित होता हूं। लेकिन भगवान ने यदा यदा दो बार यदा कहा। तो दूसरे बार जो यदा कहा उसका अर्थ हमारे आचार्य कहते हैं जिस स्थान पर। तो अब क्या हुआ, अब यदा यदा का पूरा अर्थ क्या हो गया? भगवान जिस समय जिस स्थान। कौन सा समय, कौन सा स्थान? आवश्यकता के अनुसार। जिस समय पर धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, जिस स्थान पर धर्म की ग्लानी होती है, जिस स्थान पर अधर्म की प्रधानता होती है, मैं अवतरित होता हूं। अब समय, कोई पूछेगा कि क्यों ये दोनों को विभाजित कर भगवान को सुनाना पड़ा, क्यों समय को अलग से, स्थान को अलग से? भगवान ये कहते थे हर बार मैं जन्म लेता हूं, नहीं। भगवान यहां पर हमको फिर थोड़ा समझना होगा कि भगवान का रेगुलर जो इनकार्नेशंस होते हैं, जिसको कहते हैं टाइमली इनकार्नेशंस, जिसको कहते हैं प्री प्लान्ड इनकार्नेशंस, वो कब होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, थ्री नहीं, उसका एक हम आपको एक नमूना प्रस्तुत करेंगे। कलयुग है 432,000 साल, कलयुग का डबल द्वापर युग था, द्वापर युग का डबल त्रेतायुग, त्रेतायुग का डबल सतयुग था। तो अब इतने सारे वर्षों को आप जोड़ दो और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे। ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं और उसको डबल कर दो तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे एक दिन ब्रह्मा जी का। तो इतने वर्षों में भगवान का जो टाइमली इनकार्नेशन है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में, सहस्त्र युग पर्यंतम। तो भगवान अब यहां पर ये बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम जो सुन रखे होगे मेरे टाइमली अवतारों के बारे में उसमें कंफ्यूज मत हो, मैं उसके बीच में भी कभी भी अवतरित हो जाता हूं आवश्यकता पड़ने पर, जब जब यदा यदा। तो अर्जुन पूछे बीच में भी आप आ जाते हैं? हां, तो मैं हालांकि वो प्रोटोकॉल है, वो एक नियम है, लेकिन मुझे जब दिखता है कि अभी धर्म की ग्लानी इस समय इस स्थान पर हो रही है तो मैं प्रीपोन भी कर देता हूं और पोस्टपोन भी कर सकता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं ये कारण पता है क्या कि सतयुग के बाद टेक्निकली द्वापर युग आना था, परंतु सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता, रामचंद्र जी का। तो टेक्निकली रामचंद्र जी त्रेता युग में आने वाले थे जो कि द्वापर युग के बाद पोजिशनिंग के अनुसार आता। तो अहिल्या की कथा हुई और अहिल्या को जो शाप मिला कि वो पत्थर बन गई, तो उनको उनके पति गौतम ऋषि उन्होंने शाप के साथ साथ ये कह दिया कि प्रभु राम जब अवतरित होंगे तो रामचंद्र जी के चरण कमल जब तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब रामचंद्र जी का स्केड्यूल्ड इनकार्नेशन कब था? त्रेता युग में, जो कि द्वापर के बाद आना था। तो रामचंद्र जी ने देखा कि नहीं, मुझे अहिल्या का उद्धार पहले करना है, ये भगवान ही कर सकते, पूरा युग को उठा के पहले कर लिया। द्वापर को कहा बाद में। इसको कहते हैं भगवान की सत्ता, जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। प्रभुपाद कहा करते थे कृष्णा इज द सुप्रीम ऑटोक्रैट, इफ ही डज समथिंग विच वी कैनॉट अंडरस्टैंड दैट मेक्स हिम द सुप्रीम ऑटोक्रैट। अगर हमारे दायरे में भगवान काम करने लग जाए तो पहले से ही हम लोग इतने अहंकारी हैं कि भाई हम हमारे एरिया के भगवान हैं। तो यदि भगवान हमारे दायरे में काम करने लग जाए तो फिर हम ये कहने लग जाएंगे कि वो भी मेरे एरिया के हैं, मैं तो मेरी एरिया का भगवान हूं, वो मेरी एरिया के मेरे अंडर हैं। इसलिए भगवान जब कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव बुद्धि के परे, इसलिए संस्कृत में भगवान के विषय में कहा गया है अचिंत्य, अचिंत्य खलवे भावा नताम स्तर्केण योजयेत, कि तर्क के द्वारा उन अचिंत्य भगवान की लीलाओं को, गुणों को, कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। तो अब ये जो जिस समय यदा, इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें जो स्केड्यूल्ड इनकार्नेशंस भगवान के अलग अलग आते रहते हैं, जैसे लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार इत्यादि। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वो लिस्ट के अलावा भी एक लिस्ट है, मेरे अवतारों की एक अलावा उसके भी लिस्ट है, और वो लिस्ट कौन सी है? यदा यदा, जब जब। तो अर्जुन पूछे तो फिर धर्म की ग्लानी जब जब होगी तब तब आप आते रहोगे? भगवान ने कहा सुना नहीं तुमने, यदा यदा। और भगवान ने केवल यदा यदा नहीं कहा, उसके साथ ही लगाया। तो अर्जुन कोई डाउट मत रखना, क्योंकि यदि भगवान ही नहीं लगाते तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता कि कभी कभी बोर होके नहीं आते होंगे, होता है ना। आप रोज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, विद्यार्थी कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गृहिणी जो है रोज कुकिंग कर रही है, वही टाइम पे नाश्ता, वही टाइम पे खाना, वही टाइम पे डिनर, वही टाइम पे वो ऑफिस जा रहा है, वही टाइम पे सब स्कूल जा रहे हैं। तो होता है ना कभी कभी आज मन नहीं कर रहा है। क्या मन नहीं कर रहा है? कुछ पकाने का मन नहीं कर रहा, आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। तो उसमें फिर हम लोग ही नहीं लगा सकते, हमारे कार्यों में ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे कार्य ऐसे ही रहते हैं कि आज वेडनेसडे प्रोग्राम में जाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। कोई पूछे क्यों नहीं मन कर, नहीं कर रहा है, कॉजलेस है, आज बगर है। तो इसलिए होता है कई बार, कई डिवोटीज वो बोलते हैं जब मंदिर में भगर बनती है तो हमारे अगर और मगर आ जाते हैं। तो भगवान हमारी तरह मूडी नहीं है, मूड स्विंग्स नहीं आते उनके कि अचानक चलो बहुत दिन हो गए वैकुंठ में बैठे बैठे, चलो घूम के आते हैं थोड़ा, ऐसे नहीं आते भगवान। या फिर अरे ब्रह्मा जी के एक दिन में और जब भी धर्म की ग्लानी हो रही, वो तो निकम में कभी मानते नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं बोर हो गया अभी, उनको सिखा सिखा थक गया, नहीं आऊंगा मैं अभी, जाओ जो करना है। नहीं, इसलिए भगवान ने यदा यदा ही निश्चित रूप से, अर्जुन जब भी धर्म की ग्लानी होगी, तो भगवान ही के साथ क्या बोल रहे हैं, निश्चित रूप से धर्म की ग्लानी होती रहती है। ही का एक और अर्थ क्या है? ही का एक अर्थ है कि भगवान निश्चित रूप से आते रहेंगे, और ही का अर्थ यह है कि हम लोग निश्चित रूप से धर्म की ग्लानी करते रहेंगे। तो न हम मानने वाले हैं न भगवान मानने वाले, देखना है जीत किसकी होती है ना। ये स्पर्धा, ये होड़ लगी है जीव और भगवान में। ये गलती से वापस स्लाइड नहीं आया अभी। क्योंकि यदा यदा के और दो अर्थ भी हैं। तो जिस समय और जिस स्थान, हम भगवान के जो प्रसिद्ध अवतार हैं उनको लेंगे और फिर आगे चलकर दशावतार हम लेने वाले हैं, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि भगवान अपने अलग अलग अवतारों में कैसे समय, कैसे स्थान, कौन से समय को चुना, कौन से स्थान को चुना, और आगे के जो दो अर्थ हैं यदा यदा के, वो कैसे भगवान ने चुना। तो तीसरा अर्थ यदा का क्या है? जिस रूप में आवश्यकता पड़ती है। तो यदि इस अर्थ को लें तो पूरा श्लोक उसका अर्थ क्या बनता है? अर्जुन जिस रूप में आवश्यकता पड़ती है धर्म की ग्लानी दूर करने के लिए, अधर्म की प्रधानता दूर करने के लिए, यदि कोई स्पेसिफिक रूप की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो मैं वो रूप लेता हूं। तो यहां पर तीसरा अर्थ यदा का क्या है? रूप के संदर्भ में जिस गुण की आवश्यकता पड़ती है, यदि उस पर्टिकुलर धर्म की ग्लानी जिस समय जिस स्थान पर हुई है वहां पर मुझे कोई पर्टिकुलर गुण को दिखाना है उस धर्म की ग्लानी को दूर करने के लिए, तो अर्जुन मैं उस गुण को भी धारण कर अवतरित होता हूं। तो न केवल समय, न केवल स्थान, न केवल रूप, बल्कि गुण। यदा यदा ही निश्चित रूप से अर्जुन। अब मैं इसके विषय में विचार कर रहा था कि भगवान का अवतरण, अवतार का अनुवाद भगवान ने किया है वन हु डिसेंड्स, ऊपर से नीचे आना, उसको कहते हैं अवतार। तो भगवान हमारा क्या होता है, हम भी यहां से नीचे जाते हैं, नीचे नर्क लोक हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते उधर पहुंचने के बाद मेरा अवतार हुआ है। तो मानो कि यदि भगवान का अवतरण अपने वैकुंठ आध्यात्मिक संसार से यहां आना है, तो भगवान एक यात्रा कर रहे हैं ना, अपने आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार की एक यात्रा कर रहे हैं। तो यदि हम यात्रा के फिनोमिना को लें, जब हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो हम यात्रा पर निकलने से पहले क्या क्या विचार करते हैं, उसको यदि हम समझ लें तो हमको समझ में आएगा कि भगवान की ये यात्रा, आध्यात्मिक संसार से यहां आने की यात्रा कितनी विलक्षण है। क्या समझ में आएगा, कितनी विशेष है और विलक्षण है। तो सबसे पहले यात्रा जाने से पहले आप बताइए क्या विचार करते हैं आप, घबराइए मत, बता देते हैं आपको। यात्रा का कारण होता है ना सबसे पहले, कि बिना कारण ऐसे ही अटैची पैक कर ली। सबसे पहले होता है क्या, कारण। हम कहीं पर भी जा रहे हैं, यदि सैर सपाटे पे जा रहे हैं, यदि किसी के शादी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल वो सैर सपाटा नहीं होता, वो ड्यूटी हो जाता है आजकल, तो अलग कारण हो गया ना उसका जाने का, तो हमारा मनोभाव अलग रहता है। अगर कोई शिमला, कुल्लू मनाली, ऊटी, ये सब नाम सुनते ही क्या समझ में आ रहा है, कारण अलग है यहां जाने का, है ना। अब भगवान जब यहां पर आते, भगवान ने कारण क्या दिया है, यहां पर कुछ देखने लायक कोई ऐसे नहीं कि भगवान हिल स्टेशन, चलो हिल स्टेशन देखने चलते हैं, कहां के, पृथ्वी लोक के हिल स्टेशन, कुछ देखने लायक नहीं है, क्योंकि भगवान का वैकुंठ पति, वैकुंठ के रहने वाले, वहां के पति, शास्त्रों में तो बताया गया है कि देवता भी यहां पर पैर नहीं रखते, जब देवता को आना पड़ता है किसी कार्य के लिए, अगर देवताओं को आना पड़े, राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि देवता अगर उड़ रहे हैं, एक लोक से दूसरे लोक उड़ रहे हैं, और बीच में हमारा पृथ्वी, पृथ्वी लोक आ रहा है, तो यदि उनको लघु शंका के लिए उतरना पड़े, लघु शंका अगर आप जानते हैं, पेशाब के लिए, तो कहे वो पेशाब के लिए धरती पे उतरते नहीं है, रोक के रखते हैं, अगली बार उधर जब पहुंचेंगे तब कर लें। तो उसके लिए भी वो कंसिडर नहीं करते, और हमको लग रहा होगा कि मैं कितने बड़े बंगले में रहता हूं। मैं कितना ऐश्वर्यशाली, पैसा वाला हूं, they don't even these are the demigods, first of all. Forget about Krishna. These are the demigods. They don't even consider coming on this earth planet even to relieve themselves. और बताया गया है कि वो अगर आए भी तो वो अपने पैर धरती पर नहीं रखते, यहां पर नहीं रखते हो बिल्कुल. और देखो भगवान श्री कृष्ण जब वो अवतरित हुए तो नंगे पैर घूम रहे थे. नंगे पैर भगवान वृंदावन में इस धरती पर सब जगह घूमे. इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, श्याम सुंदर कृष्ण, वृंदावन चंद्र कृष्ण जब अवतरित हुए तो सबसे सौभाग्यशाली धरती माता थी, क्योंकि धरती माता के संपर्क में भगवान हर समय रहे. चाहे भगवान वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, हस्तिनापुर में, धरती माता के संपर्क में हर समय भगवान रहे. और इतना ही नहीं, वृंदावन में तो भगवान बिना पादत्रण के, बिना चप्पलों के भगवान अपने डायरेक्ट चरण कमल धरती को स्पर्श कर रहे थे, जिस धरती के ऊपर देवता अपने पैर तक नहीं रखते जब वो उनको आना होता है. ये है भगवान की कृपा. तो कारण क्या हमारे पास है भगवान को प्रलोभित करने के लिए कि भगवान यहां आए हमको मिलने के लिए या देखने के लिए? एक तो हम स्वयं अपने जीवन को नारकीय बना लिए. नारकीय जीवन जानते हैं, हेलिश, अपने इंद्रिय भोग के द्वारा, और पृथ्वी को भी नारकीय बना रहे हैं. इसलिए कहा जाता है कि आजकल यमदूतों को आने की जरूरत नहीं है. कलयुग में यमदूतों को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ही लोकल नर्क इधर ही बना लिया है अपना. हमने उनको कह दिया है कि आपकी छुट्टी, आपको आने की जरूरत नहीं है. वी हैव क्रिएटेड हेल हियर ऑन दिस प्लैनेट. अब एक देखिए, मान लो कि कोई व्यक्ति जा रहा है कोई हिल स्टेशन, जैसे हमने चर्चा की शिमला, कश्मीर वगैरह. कश्मीर पता नहीं आजकल हिल स्टेशन है कि. एक व्यक्ति बोले इज नो मोर हिल स्टेशन, इट्स किल स्टेशन, आतंकवादियों के वजह से. तो अब कोई अगर प्लान कर रहा है कहीं हिल स्टेशन जाने के लिए, तो क्या समझ में आएगा कि यहां पर बोर हो रहा है ना, यहां पर बोर हो रहा है इसलिए तो वो हिल स्टेशन जा रहा है. हमारे एक इस्कॉन के प्रभु जी प्रभुपाद डिसाइपल वो कह रहे थे कि अमेरिका में कुछ ऐसी जगह है जहां पर कोई शहरी वातावरण नहीं है, केवल प्राकृतिक सुंदरता है. तो वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर उनके लिए क्या एडवर्टाइज किया जाता है? गो टू न्यूयॉर्क, द हाई राइज बिल्डिंग्स, द लाइटिंग्स, द सिटी विथ नेवर स्लीप्स. तो वहां पर ट्रेवल एजेंट्स क्या एडवर्टाइज करते हैं उनको कि आपको यदि छुट्टी पे जाना है तो कहां जाओ? न्यूयॉर्क जाओ. और न्यूयॉर्क में जो वहां पर दिन रात अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं उनको क्या एडवर्टाइज किया जाता है ट्रेवल एजेंट्स? गो टू हवाई आइलैंड्स, गो टू करीबियन आइलैंड्स, वेयर देयर इज फ्रेश एयर, नो बिल्डिंग्स, क्योंकि वो पक गए बिल्डिंग. यहां पर हमारी स्थिति ऐसी है. तो कोई व्यक्ति यदि किसी हिल स्टेशन में जा रहा है, मतलब यहां बोर हो रहा है इसलिए तो हिल स्टेशन जाना चाहता है ना? तो भगवान यहां पर आ रहे हैं यदा यदा, जब जब आवश्यकता पड़ने पर भगवान आते रहते हैं. तो एक तो हमको कभी ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि भगवान भी क्या वहां पर बोर हो जाते हैं कुछ समय बाद. नहीं, भगवान के तो उत्सव, नित्योत्सव कहा गया है. आध्यात्मिक संसार क्या है? नित्योत्सव. नित्य उत्सव जहां पर होता रहता है. तो अगर एक उदाहरण हम आपको दें कि मान लो, अच्छा उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भौतिक संसार की तुलना जेल से की गई. किसे की गई? जेल. इसलिए भौतिक संसार का एक नाम है दुर्ग. दु का अर्थ है मुश्किल, ग का अर्थ है बाहर निकलना। तो जैसे जेल से बाहर निकलना मुश्किल है, इसलिए इस भौतिक संसार की तुलना जेल से की गई। तो हम कौन हो गए फिर? अगर भौतिक संसार जेल है तो हम कैदी। तो अब मान लो कि आपकी बर्थडे पार्टी चल रही है और सभी लोग एकत्रित हुए हैं, आपकी केक काटी जा रही है, आपकी मतलब आपके नाम की, तो उस पे आपका नाम लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे एक्स वाई जेड, और सब मोमबत्तियां वगैरह जली हुई और सभी लोग अभी वहां पर रेडी हैं वो बर्थडे का सॉन्ग गाने के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कितनी बार बोलते रहते हैं, उसको याद दिलाते रहते हैं, भैया हैप्पी था याद अगर तुझको है तो। उसको वो गीत, उसका गीत गाया जा रहा है, दीवारों पे लिखा गया है हैप्पी बर्थडे टू एक्स वाई जेड, केक के ऊपर लिखा हुआ है, सभी लोग गिफ्ट लाकर, ग्रीटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, सब लोग क्या कहा, सब जगह पे तुम ही केंद्र में हो। और उस दौरान कोई आपको पूछे, क्या इस समय जब तुम सब तुम्हारे रिश्तेदार और मित्रों से घिरे हुए तुम्हारी बर्थडे मना रहे हो, क्या इस समय तुम्हें नासिक के सेंट्रल जेल के कैदी याद आ रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है, हाँ मजाक किरकिरा कर रहे हैं यहां, बर्थडे पार्टी चल रही सेंट्रल जेल के कैदी, मैं वैसे कभी याद नहीं करता। तो कल्पना कीजिए कि जब आपका कोई उत्सव चल रहा है उस दौरान आप भूलकर भी कभी किसी कैदी को याद नहीं करेंगे, तो भगवान का हर समय आध्यात्मिक संसार में क्या चल रहा है, उत्सव, उनकी जन्माष्टमी हर दिन मनाई जा रही है, और उस दौरान भगवान हमारे विषय में सोचते हैं और अवतरित होते हैं। यह है भगवान की अहैतुकी कृपा आत्म मायया। थोड़ा अंदाजा आ रहा है भगवान के आने का कारण, कि हमने कोई भगवान को बहुत आकर्षक तरीके से नहीं यहां पर बुलाया है, अट्रैक्टिव तरीके से भगवान को नहीं बुलाया है। तो कारण समझ लीजिए कि भगवान की अहितु की कृपा, यात्रा का स्थान, वही हम चर्चा करते, कभी आप परिवार में बैठ के चर्चा करते हैं, गर्मियों की छुट्टी में इस बार हम तिहार जेल चलते हैं, कैसा रहेगा तिहार जेल, येरवाड़ा, इधर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है वो जेल, नहीं तो सोचिए भगवान यदा यदा बोलकर अर्जुन को बता रहे हैं, निश्चित रूप से अर्जुन मैं स्थान कौन सा चुनता हूं, ये भौतिक संसार, ये भौतिक संसार मैं चुनता हूं स्थान। इसलिए यात्रा जाने से पहले लोग कारण यात्रा का उस पर विचार करते हैं, स्थान पर विचार करते हैं कि कहां जाने वाले हैं, वो प्लान करते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, कहां जाना है भाई, अच्छा स्थान बताओ। एक पत्नी ने पति से पूछा, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, कहां जाना है इस बार, पति ने पूछा तुम बताओ कहां चले, ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पहले कभी नहीं गए हम। पति ने कहा किचन कैसा रहेगा, समय, यात्रा का समय हम निर्धारित करते हैं कि कौन से समय, कौन सा उपयुक्त समय, जैसे कि अगर कोई शिमला वगैरह कब जाना चाहते हैं, जब यहां गर्मियां शुरू होती हैं, है ना, वहां पर ठंड की बर्फ चल रही है दिसंबर जनवरी के महीने में, कोई नहीं जाता, कोई कुल्फी जम जाएगी वहां, तो वहां पर कब जाना चाहते हैं, समय देखते हैं कि अगर शिमला जाना है, कश्मीर जाना है, ऐसी जगह ठंडी जगह पर जाना है, तो समय निर्धारित कर। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, मेरा समय कौन निर्धारित करता है, धर्म की ग्लानी और अधर्म की प्रधानता। मैं खुद ये नहीं कहता कि भाई तुम आपस में देख लो, अभी जब धर्म की ग्लानी हो रही है मैं अपने समय के अनुसार आऊंगा, जब मुझे ठीक लगेगा, जब तुम्हारे यहां का मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तब मैं आऊं। नहीं, भगवान ये सब नहीं देखते। तो ये तीसरा विचार हम करते हैं यात्रा प्रारंभ करने से पहले, समय, स्थान, कारण। चौथा विचार क्या होता है? पिछला अनुभव क्या रहा हमारा, है ना? यदि हम किसी स्थान पर गए, एक बार गए हुए हैं, तो पिछला अनुभव क्या रहा? यदि कोई कश्मीर गया और वहां पर उसने अनुभव ये रहा कि कर्फ्यू लग गया था जब वो गया था, तो कहेगा नहीं भैया अब नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली बार बड़ा भयावह एक्सपीरियंस रहा है। या फिर दूसरों से पूछते हैं जो गए हुए हैं, भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये सब जगहों, तो अपना अनुभव बता देंगे, हमारा अनुभव ऐसा, खाने पीने के लिए, रहने के लिए होटल, ये सब वातावरण, क्लाइमेट, मौसम, ये सब बता दे, फिर हम लोग डिसाइड करते। तो अनुभव, जैसे पहले जब मैं पहले कानपुर में पोस्टेड था, तो एक ट्रेन चलती थी बंबई से कानपुर, पुष्पक, अभी भी शायद चलती है पुष्पक एक्सप्रेस। तो ट्रेन से आना जाना होता था, जब भी छुट्टी होती थी तो बंबई आता था ट्रेन से। और यात्रा में देखिए आपके क्या क्या अनुभव आते हैं, विशेष रूप से जो यात्री इंडियन रेलवे में, जो आपके बोगी के अंदर अलग अलग प्रकार के यात्री। तो मुझे अभी भी याद है बंबई से वो पुष्पक एक्सप्रेस में जब मैं बैठता था, तो 90% सब कानपुर के रहने वाले, और उनकी वो कानपुरी हिंदी बहुत ही विशेष हिंदी उनकी हुआ करती थी। कानपुरी हिंदी बहुत ही सुनने में स्वीट भी लगती है। वो लोग मैं और तू ये सब यूज नहीं करते, हम और आप, एकदम कल्चर तरीके से कहते हम और आप। तो उनकी भाषा से समझ में आ जाता था कि ये लोग कानपुर के रहने वाले, नहीं तो जब वहां से ट्रेन बंबई की ओर निकलती तो ज्यादातर थोड़े बंबई की भाषा, आयला, गयला, सोयला, तो समझ में आ जाता था कि वो कहाँ का है। तो अनुभव, तो मुझे याद है एक बार मैं बैठा हुआ था, और मैं तो अकेला आता जाता अकेला था, तो अक्सर मैं देखता था कि कोई कानपुर के आसपास के गांव का कोई व्यक्ति उस पुष्पक एक्सप्रेस में बैठा है, तभी वो लोग के पूरे रिश्तेदार भी बंबई में अगर काम कर रहे हैं तो सब लोग 20-20 लोग आ जाते हैं उसको सी ऑफ करने के लिए। पहले समझ में नहीं आता कि कितने लोग जा रहे हैं, जब ट्रेन चलती तो समझ में आता एक ही व्यक्ति जा रहा है इसमें से। और क्यों डर लगता था? क्योंकि अब आपका रिजर्व्ड है, ये भी एक बहुत बड़ा माजरा हो जाता है कि आपका रिजर्व टिकट है, और अगर 20 लोग आ गए बिना रिजर्वेशन के तो फिर तो आप भूल जाओ आपका रिजर्वेशन। जैसे हमारे एक भक्त, वो जा रहे थे उत्तर भारत ट्रेन में, तो अचानक एक स्टेशन में इतने सारे लोग घुस गए, और वही रेगुलर टिकट लेकर, और सब आके आसपास सब जब बैठ गए ऊपर नीचे आगे पीछे, तो उन्होंने पूछा भाई साहब रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन तो गाड़ी खरीद ली, गाड़ी तो नहीं खरीदी। तो वो अनुभव मुझे याद है, एक व्यक्ति उसको सी ऑफ करने के लिए उसके सारे रिश्तेदार, और वो सब वहीं के रहने वाले, वो लोग सब आ गए सी ऑफ करने, और उस समय रिजर्वेशन आपको अगर मिल गया तो मतलब आपको मोक्ष प्राप्ति हो गई, ऐसे लगता था आपको वैकुंठ प्राप्ति हो गई, रिजर्वेशन हो गया आपका। और वो कैसा रिजर्वेशन? वो जो आप लाइन में खड़े होके, रिजर्वेशन काउंटर में, कोई ऑनलाइन नहीं, लाइन में खड़े होके एक एक दो दो घंटा काउंटर तक पहुंचे, काउंटर खुला है फिर भी जब तक आप पहुंचे हो, अक्सर क्या होता था आप दो घंटा खड़े हो, जैसे पहुंचे आप काउंटर बंद, नेक्स्ट काउंटर उधर जाओ या दूसरे दिन आओ, और आपको रिजर्वेशन मिल गया, कंफर्म रिजर्वेशन, तो उनके अंदर जो उत्साह कि हमारे व्यक्ति का हमारे बिरादरी के व्यक्ति का कंफर्म रिजर्वेशन मिला है, ऐसा वैसा नहीं, कंफर्म्ड है, तो वो लोग सब उसको बार बार रिपीट कर रहे थे। तो उसको लेके आया, बंटी रिजर्वेशन पूरा है, रिजर्वेशन है, उस तरह की रिजर्वेशन है, पूरा बैठना, तो तुम्हारा रिजर्वेशन है, पूरा अच्छी से बैठ लेना, ये बर्थ है, ये रिजर्वेशन है, इसमें अच्छी से बैठना, और ये जो पंखा है ये कानपुर तक चलता रहना चाहिए, और ये अगर चले नहीं तो कंघी निकाल कर खड़बड़ा लेना उसको। अक्सर हमारे पंखे वो खड़बड़ाने से चले होते हैं, तो अगर चले नहीं तो खड़बड़ा लेना। तो तुम्हारा रिजर्वेशन है बंटी, तुम्हारा रिजर्वेशन है, ये वाजबेसन है, ये वाजबेसन है, उसके बगल में संडास है, पूरा पूरा कर लेना, रिजर्वेशन है, अंदर बैठना, अगर कोई बाहर से खटखटाए तो चिल्लाकर बोलना रिजर्वेशन है, पूरा पूरा कर कर आएंगे हम, पूरा पैसा वसूल करना, रिजर्वेशन है। अच्छा रिजर्वेशन, उसको पूरा समझा रहे हैं कि तुम्हारा रिजर्वेशन है, बोला हाँ हाँ चाचा पता है, हाँ तुम्हारा रिजर्वेशन पूरा एंड तक रिजर्वेशन है तुम्हारा, हाँ पूरा पैसा दिए हैं वसूल करना पूरा, हाँ। और उस दौरान ट्रेन चालू हो गई, तो फिर समझ में आता है कि किसका रिजर्वेशन है। तो फिर वो पूरे 20 लोग अभी नीचे उतरे, ट्रेन चालू हो गई, और भागते भागते फिर वो उसको बोल रहे हैं कि अच्छा सुनना, अम्मा को बोलना हम जाड़े के मौसम में आएंगे, और बबली को कहना कि उसका रिश्ता पक्का कर लिया है, और वो लड़का जो है उसकी खुद की गाड़ी है और गाड़ी भी चलाता है, वो टैक्सी वाला है मतलब। तो मुझे बाद में समझा वो टैक्सी वाला। तो बबली से कहना उसका रिश्ता हो गया पक्का, वो हमने लड़का देख लिया है, उसकी खुद की गाड़ी है, वो खुद ही चलाता अपनी गाड़ी, और अम्मा से कहना कि हम जाड़े के मौसम में आएंगे, और चिट्ठी लिखना, और बीच में कुछ खाना मत, पूड़ी आलू दिया है वही खाते रहना, और संदूक खोल के पैर उसके अंदर घुसेड़ लेना, संदूक चोरी कर लेगा नहीं तो कोई, ठीक है बोल देना, हाँ अरे टिकट तो मेरी जेब में रह गई। तो हमारे यात्रा के जो अलग अलग अनुभव हमको आते हैं, जैसे एक बार एक बूढ़े चाचा ऊपर बर्थ पे बार बार उतर उतर के वो टॉयलेट जा रहे थे, तो नीचे एक लड़का उसको जगह देनी पड़ रही थी बार बार, तो उसने 3 बार 4 बार 5 बार हो गया 1 घंटे के अंदर। तो उसने पूछा चाचा चैन नहीं है आपको, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो ऊंचा सुनाई देता था चाचा को, क्या क्या कहा बेटे, चाचा चैन नहीं है, वही तो कह रहा हूं चैन तो है, कंबख्त खुलती नहीं है। तो यात्रा के हमारे जो पिछले अनुभव होते हैं, हम उन पिछले अनुभवों को लेकर हमारी अगली यात्रा करते। तो यहां हम यदि देखें कि भगवान अपने अलग अलग अवतार में आ आकर हमको सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर भी हम समझते नहीं, सीखते नहीं। तो भगवान यदि ऊपर अपने वैकुंठवासियों को कहें कि भाई मेरा पिछला अनुभव इतना बेकार रहा है, तो क्यों जाऊं मैं, नहीं, चाहे कितना भी भगवान का पिछला अनुभव हमारे साथ बद से बदतर होता जाए, फिर भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यदा यदा ही मैं निश्चित रूप से अवतरित होते रहता हूं, होते रहता हूं, होते रहता हूं। तो अब हम संक्षिप्त रूप में भगवान के जो दशावतार हैं, हमने जो यदा यदा ही, इनके अलग अलग जो कारण हैं यदा यदा के, वो समझे। तो अब केवल भगवान के तो अनगिनत अवतार हैं, परंतु जो प्रसिद्ध दशावतार हैं उनको अगर हम लें तो हमको एक थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि भगवान ये जो कहा कि समय, स्थान, रूप और गुण में कैसे उनको ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकता है उसके अनुसार मैं अवतरित होता हूं। तो सबसे पहले मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार को यदि हम यदा यदा के संदर्भ में मत्स्य अवतार को समझने की कोशिश करें तो भगवान ने मछली, मत्स्य का अर्थ है मछली, केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान ने मीन शरीर, मछली का शरीर लिया। क्यों? तो वेद जो हैं वो चुरा लिए गए थे और ब्रह्मा जी को वेद पुनः देने के लिए जिस स्थान से चुराए गए थे, जिस जगह चुरा कर ले गए थे, वहां से निकालने के लिए भगवान ने समुद्र में ये विशाल मछली का रूप धारण किया। तो जिस स्थान को ध्यान में रखते हुए और उस स्थान के लिए कौन सा रूप जरूरी है वो रूप लिया, और उस रूप के क्या गुण हैं वो गुण, और जिस समय हुआ। ऐसा नहीं कि जब वो चुराए गए तो भगवान ने इत्मीनान से कहा कि ब्रह्मा जी को मैं अपने समय पर आऊंगा, तब तक फुर्सत में रहो, नहीं, तुरंत। तो मत्स्य अवतार में भगवान ने ये सिद्ध किया। इसके पश्चात कूर्म अवतार। कूर्म का अर्थ है कछुआ। तो कछुए के रूप में भगवान यहां पर दैत्य और देवता समुद्र मंथन कर रहे हैं और मंदराचल पर्वत को उन्होंने मथनी बनाया है और वसुकी को रस्सी बनाकर वो जब मथना शुरू किए तो वो जो मंदराचल पर्वत है वो सरक कर फिसल कर नीचे गिरने लगा। तो फिर वो भगवान के पास गए कि भगवान ये तो मंथन कैसे हो पाएगा, तो ये तो मंदराचल पर्वत फिसल कर गिर रहा है। तो भगवान फिर नीचे गए और कूर्म के रूप में सहारा दिया। तो भगवान के पीठ के ऊपर इतना बड़ा मंदराचल वो घिस रहे थे पर्वत को, भगवान के पीठ के ऊपर। तो सोचो कि यदि पर्वत को मथनी बनाया है तो पीठ कितनी बड़ी होगी उस पर्वत को अपने पीठ पे लेने के लिए, और भगवान ने कितना बड़ा रूप लिया होगा एक कछुए का। क्यों? क्योंकि कछुए की जो पीठ होती है, तो यहां पर भगवान ने सोच विचार कर अपना रूप लिया उस कारण को सिद्ध करने के लिए जिसके लिए उनको बुलाया गया था। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, यदा यदा ही कूर्म अवतार में क्या समझ में आ रहा है कि भगवान यदा अर्थात रूप, और कौन सा रूप, कछुए का रूप जिसकी पीठ इतनी शक्तिशाली होती है, तो वो गुण उस रूप का लिया, स्थान और समय। वराह अवतार। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई, उसने पूरी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबो दिया था, और फिर जब भगवान के पास जाकर प्रार्थनाएं की देवताओं ने, तो भगवान ने, अब देखिए भगवान का प्रकटीकरण, वराह देव का प्रकटीकरण कौन से स्थान से हुआ, वो ब्रह्मा जी के एक नथुनी से पैदा हुए वराह देव, वन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, इतने छोटे। सोचो कि अभी किसी के नाक से बाहर आना ये कोई उचित स्थान तो नहीं लग रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी के नथुनी से प्रकट हुए ये दिखाने के लिए कि तुम घबराओ मत, मैं इतना छोटा बनकर आऊंगा और लेकिन इतना विकराल रूप मैं लूंगा। कि वराह देव के विषय में बताया गया है कि वराह देव इतने बड़े हुए, ब्रह्मा जी के नथुनी से निकलने के पश्चात इतने बड़े हुए वराह देव। अच्छा, उनका रूप था सुकर, एक सुअर के रूप में भगवान, इतने बड़े भगवान हुए कि उनके एक रोम छिद्र में यदि इस पूरी सृष्टि के सारे समुद्र का पानी डाल दिया जाए तो भी कम पड़ता था, वो केवल एक रोम छिद्र उनका। और इतने बड़े वराह देव, तो उन्होंने सुअर का रूप क्यों लिया? क्योंकि सुअर के गुण क्या होता है कि वो पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर की वस्तु को बाहर निकाल सकता है, चाहे कितनी भी गंदगी में कोई वस्तु हो, सुअर वो अपना वो नाक अंदर डालकर सूंघकर उस वस्तु को बाहर निकाल। तो इसलिए भगवान ने सुअर के उस गुण को देखते हुए सुअर के रूप में भगवान, हालांकि भगवान जब सुअर के रूप में आते हैं तो सच्चिदानंद रूप रहता है उनका, इसलिए दशावतार स्तोत्र में कहा गया है केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो उस गुण को लिया, उस रूप को लिया उस स्थान पर, उस समय पर जहां पर पृथ्वी को बचाना था। इसके पश्चात नरसिंहदेव, अब नरसिंहदेव प्रकट हुए हिरण्यकशिपु के महल के खंभे से। तो स्थान हिरण्यकशिपु के महल का खंभा, क्योंकि लीला में वर्णन है हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछ रहे थे क्या तुम्हारे भगवान इसमें हैं क्या, और प्रहलाद ने कहा हैं इसके अंदर। तो प्रहलाद के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो कह दिया था कि तुम्हें न तो कोई देवता मार सकता है, न कोई मानव मार सकता है, तो भगवान न कोई पशु मार सकता है, तो भगवान इसके बीच में स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, आधे नर और आधे सिंह के रूप में इन सब को सिद्ध करते हुए आज के जो श्लोक से हमको क्या समझ में आ रहा है, यदा यदा नरसिंह भगवान का अवतार इन सब को पूर्ण करते हुए हुआ। इसके पश्चात वामन देव, वामन अवतार, और यहां तो इनका एक नाम उपेंद्र, इंद्र के वो भाई बने। सोचो इंद्र जिसने भगवान को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं षड्यंत्र रचे, तो भगवान क्योंकि उस लीला को सिद्ध करने के लिए बलि महाराज की भक्ति को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए भगवान एक बौना का रूप लिए। वामन इसका अर्थ क्या होता है, कोई ड्वार्फ जो होता है, बौना होता है, तो वो भगवान ने रूप लिया ताकि बलि महाराज को समझ में नहीं आए कि मैं जब तीन पग मांगूंगा तो मेरे तीन पग वो बौने के तीन पग नहीं होने वाले। तो हम विस्तार में इन कथाओं में नहीं जा रहे हैं, खाली हम इन सब अवतारों को किसके संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, यदा यदा स्थान रूप गुण समय। इसके पश्चात परशुराम अवतार, कि क्षत्रियों ने जो भयावह स्थिति पैदा कर दी थी, तो परशुराम वही भगवान के ही अवतार, लेकिन उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को, पूरे क्षत्रिय वंश को खत्म करने पर उतारू हो गए, और इसलिए उनको नाम भी मिला परशुराम, हाथ में परशु लिए, ये जो अस्त्र उनके हाथ में है उसको कहते हैं परशु। उसके पश्चात राम अवतार, तो दश अवतार में परशुराम के पश्चात रामचंद्र जी का वर्णन है कि रावण का वध करने के लिए सीता, दशरथ, बाकी उनके जो भक्त हैं उनके साथ लीलाएं करने के लिए, और हमें बद्ध जीवों को ऐसे ऐसे स्थान देने के लिए जैसे कि नासिक पंचवटी, जहां पर हमारा उद्धार हो सके। तो देखिए भगवान यदा यदा ही के पीछे जो भगवान का राम अवतार अगर हम खाली लें तो क्या क्या कारण उन्होंने क्या क्या सिद्ध किया, स्थान कारण रूप समय सब कुछ। उसके पश्चात केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, बलराम जी को हलधर कहा गया है। तो बलराम जी का विशेष अवतार हुआ है हमें ये सिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो बलराम जी की कृपा आवश्यक है। और कृष्ण कौन है, वो अवतार नहीं वो अवतारी हैं, इसलिए दशावतार के लिस्ट में कृष्ण का मेंशन नहीं हुआ है उस स्तोत्र में। तो बलराम जी दर्शाते हैं गुरु तत्व को, तो गुरु तत्व को सिद्ध करने के लिए बलराम जी प्रकट हुए भगवान के बड़े भाई बनकर। उसके पश्चात कलयुग में भगवान बुद्ध, श्रीमद् भागवत में इनका भी वर्णन है, भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि भगवान बुद्ध का अवतरण एक विशेष स्थान पर विशेष समय विशेष कारण के लिए विशेष रूप में, क्योंकि ब्राह्मण जो थे जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए तो वो वेद को लेकर पशु हत्या कर रहे थे और गलत तरीके से इल्लीगली कर रहे थे। तो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण कुल का नाश हो रहा था, वेदों का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए भगवान बुद्ध का वहां पर अवतरण हुआ। उसके पश्चात कलयुग में आखिरी अवतार जो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है, उनके विषय में भी बता दिया गया है श्रीमद् भागवत में कि वो कहां अवतरित होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे और उनके कार्य क्या होने वाले हैं। तो सोचिए कि भगवान, ये जो ही शब्द कितना महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से कि आगे के अवतार के विषय में भी भगवान ने बता दिया है कि निश्चित रूप से वो किस अवतार में कहां पर। तो ये निश्चित रूप से जो भगवान ने यदा यदा ही में कहा है, इसको हमें इस प्रकार से समझना है कि यदि कलयुग में जो तथाकथित अपने आप को भगवान कहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से आने वाला हूं और मैं निश्चित रूप से आता हूं। तो कोई भी यदि अपने आप को कलयुग में भगवान कहता है तो भगवान उसका पर्दाफाश कर रहे हैं ही शब्द इस्तेमाल कर। और इन सब के स्रोत हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे जितने 10 अवतार जो हम जानते हैं, और केवल 10 अवतार नहीं है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरेक योनि में भगवान अवतरित हुए, मच्छर की योनि में भी अवतरित हुए, पुराणों में उसका भी वर्णन दिया गया। और कितने भगवान के अवतार हुए हैं, जितनी लहरें समुद्र में कोई गिन सकता है, तो वैसे भगवान के अनगिनत अवतार हैं। और उन सब अवतारों के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि अवतारी हैं इनके स्रोत। और वो अर्जुन को आज के श्लोक में बोल रहे हैं यदा यदा ही कि मैं स्वयं अवतरित होता हूं। अब यहां पर भगवान का जो मनोभाव है, हमने व्याकरण के दृष्टिकोण से यदा यदा ही समझा, अब हम भावना के दृष्टिकोण से यदि समझने की कोशिश करें, द 3 CC रीजंस फॉर सुप्रीम लॉर्ड्स अवतार, कंसिस्टेंट कंसर्न, कंसिस्टेंट करेक्शन, कंसिस्टेंट कंपैशन। क्यों हमने कंसिस्टेंट को यूज किया है, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने भी श्लोक इसी प्रकार से संस्कृत में कहा यदा यदा। यदा यदा का अर्थ क्या हुआ पूरा उसका हम निचोड़ निकालें। लॉर्ड इज सेइंग आई कंसिस्टेंटली टेक माय इनकार्नेशंस व्हेनेवर व्हेरेवर व्हिचएवर हाउएवर कंसिस्टेंटली। तो भगवान, यहां पर अगर हम पहला सी लें, कृष्णा हैज कंसिस्टेंट कंसर्न अबाउट अस, चिंता। भगवान निश्चित रूप से, नियमित रूप से हमारी चिंता करते हैं, कंसिस्टेंटली कमिंग टू करेक्ट, निश्चित रूप से, नियमित रूप से हमें सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, कंसिस्टेंटली कंपैशनेट। और ये सब का कारण क्या है, भगवान की करुणा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। करुणा के सिंधु, और वो भी कौन सा सिंधु, कौन सा समुद्र जिसका कोई और छोर नहीं, जिसे कोई गहराई नाप नहीं सकता, ऐसी करुणा उनके अंदर। तो यदा यदा ही आज के श्लोक से अगर हम भगवान के मनोभाव को समझने के लिए जाएं तो भगवान के मनोभाव 3CC रीजंस जो हैं उसे समझ में आएगा। अब इसके ठीक विपरीत द 3CR रीजन फॉर कंडीशन लिविंग एंटिटीज बॉन्डेज, कि यदा यदा ही हमारे लिए भी उपयुक्त हम कर सकते हैं कि यदि हम हमारी स्थिति बताने के लिए जाएं या कोई अगर हमारी स्थिति बताने जाएं तो हमारी स्थिति भी बताने के लिए क्या यदा यदा ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रिबेलियन, भगवान का क्या था, कंसिस्टेंट कंसर्न, कंसिस्टेंट रिबेलियन इन आर केस। सेकेंड इज कंसिस्टेंट रिजेक्शन, नॉट ओनली वी रिबेल्ड एंड केम हियर बट हियर वी आर कंटिन्यूइंग टू रिजेक्ट हिम। एक तो वहां बगावत कर आए आध्यात्मिक संसार में, वहां बगावत की, यहां आए, यहां आने के बाद भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हर एक योनि में जितने हम भगवान से दूर जा जाकर अपने इंद्रिय भोग में लगने का प्रयास कर रहे हैं तो हम भगवान को बता रहे हैं कि हाउ कृष्णा आई रिजेक्ट यू। नॉट ओनली सम सोल्स आर रिजेक्टिंग कृष्णा, नॉट ओनली हैव दे रिबेल्ड बट द थर्ड CR इज कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट राइवलरी। क्या कि भगवान को लोगों ने इस संसार में दुश्मन मान लिया अपना। बहुत से ऐसे आजकल तो ये नास्तिक एथिस्टिक सोसाइटीज हैं जिनके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे तुम किसका प्रचार करो, राइवलरी विथ गॉड। सो दिस इज अवर सिचुएशन अगेंस्ट कृष्णाज CC फॉर्मूला, वी हैव अवर CR फॉर्मूला, कंसिस्टेंट रिबेलियन, रिजेक्शन, राइवलरी। तो ये यदा यदा ही भगवान के साथ साथ हम भी लागू कर रहे हैं हमारे जीवन में, कंसिस्टेंटली डूइंग अवर नेफेरियस एक्टिविटीज। तो यदि हम अब यदा यदा ही को कृष्ण और बद्ध जीव लिविंग एंटिटी के कंपैरिजन में लें तो क्या समझ में आ रहा है, कंसिस्टेंट मर्सी वर्सेस कंसिस्टेंट डिसोबीडियंस। हमने इसकी चर्चा की कि क्या हो रहा है, स्पर्धा कौन सी चल रही है हम में और भगवान में, कि हम भगवान को कंसिस्टेंटली उनका निरादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, और भगवान उसके बावजूद तो हम भगवान को कह रहे हैं यदा यदा ही निश्चित रूप से जब भी जहां भी जिस रूप में जिस गुण में मैं आपको नहीं मानूंगा। हमारा श्लोक कौन सा है, यदा यदा ही, वो जो चारों कारण है यदा यदा के, मैं वो चारों तरीके से भगवान आपका अनादर करूंगा, मैं आपको नहीं मानने वाला, मैं आपकी भक्ति नहीं करने वाला। और भगवान फिर कहते हैं यदा यदा ही मैं निश्चित रूप से आता रहूंगा, जब जब तुम धर्म की ग्लानी करोगे व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से। तो यहां पर भगवान में और हम में होड़ लगी हुई है, स्पर्धा। अब प्रश्न है जीतेगा कौन, जानना चाहते हैं, थक गए चले आगे की भगर याद आ रही अब एक यहां पर तुकाराम महाराज का उदाहरण, उनका जो प्रेम भगवान विट्ठल के प्रति, एक उनके प्रेम में से जो अनगिनत तरीके से उन्होंने विट्ठल को प्रेम किया, उसमें से एक बहुत विशेष तरीके से उन्होंने भगवान श्री विट्ठल को प्रेम किया। तो मैंने केवल उस एक विशेष उनकी भावना को आज के श्लोक के संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने विट्ठल को एक नाम से पुकारा है, विट्ठलाई। क्या अर्थ हुआ इसका? विट्ठल माझी आई, भगवान को वो अपनी मां मां पुकार रहे हैं। भगवान विट्ठल कौन है? कृष्ण। तो भगवान विट्ठल कृष्ण है, पुरुष है वो। तो तुकाराम महाराज ऐसे पुरुषावतार भगवान विट्ठल को आई या मां क्यों पुकार रहे हैं? तो आज के श्लोक में अगर हम उसको कनेक्ट करें तो भगवान ने यदा यदा ही में भगवान ने मातृ प्रेम क्या होता है पुत्र के प्रति वो दर्शाया। एक मां का प्रेम बच्चों के प्रति क्या होता है? भगवान कह रहे हैं ग्लानिर भवती भारत। जब भी ग्लानी होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, धर्म की ग्लानी होती है, जब भी मेरे बच्चे मुझसे अलग होकर मुझे रिजेक्ट कर मुझे अपना शत्रु मानकर नहीं जानते हुए कि वो मेरे अंश हैं, मैं माता का भाव लेकर कभी त्यागता नहीं हूं। माता का भाव लेकर भगवान कह रहे हैं मैं कभी अपने अंशों को त्यागता नहीं हूं, भूलता नहीं हूं। जैसे कि मां बच्चा भूल जाए, बच्चा अपने मां को तिरस्कृत कर दे, बहिष्कृत कर दे, होता है कलयुग में मां बाप को बहिष्कृत कर देते बड़े होने के बाद। तो यदि वो माता को तिरस्कृत कर दे, फिर भी जो मां है वो अपने बेटे को हर समय अपना टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, अपना स्वयं का लाडला ही मानती है, इसको कहते हैं शुद्ध मातृ प्रेम। इसलिए तुकाराम महाराज वो भगवान को बुला रहे हैं विट्ठलाई, कि हां मैं गलतियां करूंगा, मेरे अंदर गलतियां होंगी, परंतु आप का गुण क्या है? आप मेरी आई की तरह, आप मेरी माता की तरह। इसलिए हमारे गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, दोनों इस्तेमाल किया है, पितामहस्य जगत माता धाता पितामह, सब कुछ बोल दिया भगवान ने। मैं न केवल पिता हूं बल्कि माता भी हूं, पितामह भी हूं, सब रिश्ते भगवान ने स्थापित कर दिए। तो आगे हम दोनों की चर्चा करेंगे, कैसे भगवान हमारी माता भी बन जाते हैं और हमारे पिता भी बन जाते हैं। तो यहां पर तुकाराम महाराज ने जो विट्ठल को अपनी मां का दर्जा दिया है, और आज के श्लोक में भगवान केवल व्याकरण के दृष्टिकोण से दो बार यदा नहीं कहे हैं, बल्कि अपनी भावना के दृष्टिकोण से, मात्र प्रेम के दृष्टिकोण से भगवान कह रहे हैं कि जब भी मेरे अंश मुझसे अलग होकर अधर्म में लगते हैं, एक माता की तरह मैं हर समय आता हूं उनको पुनः मेरे पास, मेरे निकट लाने के लिए। तो इसके संदर्भ में हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे आज। हालांकि ये आधुनिक वीडियो है, परंतु हमको ये आधुनिक वीडियो जो पॉइंट चल रहा है, कृष्ण माता, भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने अपने एक भजन में कहा अपराध शून्य होए लहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गोद्रो में नित्यानंद महाजन। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से पुकारा है, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण माता विट्ठलाई, जो बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हुए हैं उन्होंने कैसे दोनों पुकारा है। तो पहले हम ये वीडियो देखेंगे कि माँ का दर्जा क्या होता है और माँ और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो कितना शुद्ध होता है और कई बार उसके अंदर अशुद्धता भी आ जाती है तो मां संभालती है अपने बच्चों को।
My little boy came up to me in the kitchen this evening while I was making dinner. And he handed me a piece of paper he'd been writing on. And after wiping my hands on my apron, I read it. And this is what it said. For mowing the lawn, $5. For making my own bed this week, $1. For going to the store, 50 cents. Playing with little brother while you went to the store, 25 cents. For taking out the rubbish, $1. Getting a good report card, $5. And for raking the yard, $2. Total owed, $14.75. Well, I looked at him standing there expectantly, and 1,000 memories flashed through my mind. And so I picked up the pen and turning the paper over, this is what I wrote. For the 9 months I carried you, growing inside me, no charge. For the nights I've sat up with you, doctored you, prayed for you, no charge. For the time and the tears that you cast through the years, there's no charge. When you add it all up, the cost of my love is no charge. For the nights filled with dread and the worries ahead, no charge. For advice and the knowledge and the cost of your college, no charge. For the tired suit and clothes and for wiping your nose, there's no charge, son. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. But when he finished reading, he had great big tears in his eyes. And he looked up at me and said, Mom, I really do love you. And then he took the pen and in great big letters he wrote, paid in full. When you add it all up, the cost of real love is no charge.
यहां पर समझ में आ रहा है कि विठ्ठलाई जो तुकाराम महाराज भगवान को पुकारे हैं तो उसके पीछे क्या भावना, हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि एक माता शिशु की परवरिश करने के लिए किन किन कठिनाई परेशानियों से गुजरती है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण और जीव के बीच का जो प्रेम है उसको यदि इस भौतिक संसार में आप देखना चाहो तो एक माता और उसके शिशु के अंदर जो प्रेम है वो दिखने मिलेगा। अब इतना ही नहीं, हम अभी एक और वीडियो आपको दिखाएंगे, पहले भी एक बार इसको दिखाया है लेकिन क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को न केवल माता बल्कि पिता का भी दर्जा दिए हैं और भगवान ने स्वयं गीता में कह दिया है, तो कैसे पिता भी माता के साथ साथ बच्चों की परवरिश में कठिनाइयां परेशानियां झेलते हैं और कई बार बच्चे माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
That's breathing. Τι είναι αυτό?
Μόλις τώρα στο παπατέρα σπουργείται είναι. Ένα σπουργίτη είναι ο πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι.
Τι είναι αυτό?
Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές, είπα. Είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά.
Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου ερώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
आपने देखा वो तीन बार केवल पूछा पिता ने और फिर उन्होंने बताया कि बचपन में इसी बेटे ने जब वो 3 साल का हुआ था 21 बार उसने पूछा था कि वो क्या है वो क्या है और 21 बार पिता ने आलिंगन करते हुए प्रेम से जवाब दिया था। आपने वो लाइन पे ध्यान दिया अगेन एंड अगेन यदा यदा अगेन एंड अगेन मतलब यदा यदा। तो भगवान भी आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि हर समय जब भी मेरा पुत्र मेरा अंश मुझसे बगावत कर यहां भौतिक संसार में त्रस्त परेशान कठिनाई में और न केवल कठिनाई में या परेशानी में बल्कि उस कठिनाई में परेशानी में वो मुझे तिरस्कृत कर मुझे बहिष्कृत करता है, यदा यदा ही उसके बावजूद मैं फिर पुनः पुनः अवतरित होकर उनके उद्धार के लिए यहां प्रकट होता रहता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम।